कल बहुत दिन के बाद हम सभी ने क्या मुरली सुनी, ठीक है ना। मुरलीधर भी चुप हो गया था। कैसा लगा कल बाबा माताओं को है? बस बहुत अच्छा लगा, शक्तिशाली धर्मराज भी था। धर्मराज तो नहीं लगा कल। अच्छा, टीचर स्ट्रिक्ट टीचर कह सकते हैं। धर्मराज को अभी याद ना करो, थोड़ा ठहर जाओ। अच्छा, पहले देखो, भाग्यवान आत्माओं को उस वाइब्रेशंस में बैठने का चांस मिलता है ना। ऐसा जब हम वहाँ बैठते हैं लगता है ना हम जैसा कोई नहीं, भगवान के सामने बैठते हैं, प्यार मिलता है ना उसका। हाथी कितनी बार उठवाए, अच्छी एक्सरसाइज हो गई। और रहस्य भी बता दिया कि इस हाथ को याद रखना जरा। सभा में हाथ उठाया, बाबा के सामने, ब्राह्मणों के सामने, तो ये चीजें ऐसी सुंदर तरीका है बाबा का पढ़ाने का। हाँ, हिम्मत दिलाता है, हमारी खुशी कायम रहे उसके लिए अलग अलग विधि बता देता है। तो पहले कल की मुरली से जिसको जो अच्छा लगा, एक एक बात सुना देंगे जरा। कुछ लोग बोलो। हाँ, जो अब की स्थिति है, सदा काल रहे और रहेगी, साथ रहेंगे। अब का साथ सदा काल का साथ बन जाएगा। बोलो। पहला ही शुरुआत कैसी थी? नए वर्ष में नवीनता। क्या नवीनता करने जा रहे हम सब? तपस्या वर्ष मनाने जा रहे हैं। पता चला यहाँ मधुबन में बताया किसी ने, हम तपस्या वर्ष मनाने जा रहे हैं। और जनवरी के सारे प्रोग्राम, रोज का एक संकल्प सब सेंटर्स पे भेज दिया गया है, यहाँ भी सुनाया जाया करेगा, ताकि बहुत अच्छी तपस्या हम सब कर सकें। तो नवीनता, नए वर्ष की नवीनता, सब भी अपने को तैयार करें अच्छी तपस्या के लिए, ठीक है। और क्या था लक्ष्य? और हाँ, परिवर्तन की बात थी। और लक्ष्य और लक्षण, और सोचा और किया, पासिंग मार्क्स। बस मुझे तो बाबा की बात हल्की लगी कल के। प्रभु जी को क्या हो गया? पास मार्क्स कितने मानेंगे हम? 70? वेरी गुड। मैं यही सोच रहा था कुछ बढ़ाओ परसेंटेज। कोई सोचे 33 ले लेंगे, पास हो गए, वो तो लज्जा वाली पास है ना, मजेदार पास नहीं जिसमें गर्व हो। किसी को बताएंगे भी कितने नंबर आए, 33, 35 बताने में भी लग जाएगी ना, मजबूरी होगी। और बोलो। पूरा बोलो। और क्या पॉइंट थे? अपनी संपूर्णता की सीट को नहीं छोड़ना। अभी तो सीट पे बैठे ही नहीं, फिर छोड़ने का प्रश्न? सोचना इस पे। अभी तो सीट आई नहीं, पॉइंट सबसे गहरी यही थी। और दूसरी गहरी बात थी, समय आपका इंतजार कर रहा है। सोचा सभी ने? समय किसी की इंतजार नहीं करता, परंतु कौन है महान आत्माएं समय जिनकी इंतजार कर रहा है? गहराई से विचार करने की बात है। अब सोचो, जैसे समय एक देव रूप में हमारे सामने खड़ा हो, समाप्ति का समय, प्रत्यक्षता का समय, जय जयकार का समय, वो खड़ा है हमारी इंतजार कर रहा है, ये आ जाएं। और हमारी चाल कैसी, बहुत धीमी हो, वो खड़ा ही है बहुत समय से, और वो देखे ये तो रुक ही गए चलने वाले, वो इंतजार कर रहा है, ये सबसे गहरी बात है। इसमें हमारा अपना स्वमान भी बहुत जगता है, हम कौन हैं और कितने महान हैं, जिनके लिए समय रुक कर इंतजार कर रहा हो। आती है समझ में बात या नहीं, परे की है, सोच लेना। बहुत पहले बाबा की इस पर मुरली चली है। अब ये बात बहुत सुंदर कही है, हमारे कदमों को तेज करने के लिए, पुरुषार्थी का अर्थ बता रहे थे ना बाबा, कदम आगे बढ़े, परिवर्तन होता चले। और भी कुछ था, अचानक ये बाबा ने कहा, पेपर अचानक, अटेंशन का भी टेंशन न रहे, नहीं अटेंशन माना नो टेंशन, ये दूसरी रहस्य भरी बात है। अटेंशन जिसको पुरुषार्थ में श्रेष्ठ होगा उसको कोई भी टेंशन नहीं होगा। टेंशन आता है माना पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं है। कईयों को ये भी टेंशन हो जाता है, सवेरे उठना है तो रात को कई बार उठेंगे, फिर जब सवेरे का टाइम आएगा, क्योंकि चार बार उठ गए, कहेंगे अब तो सो जाओ, थक गए बहुत बार बार उठ के। ऐसा बहुतों के साथ होता है। अभी रास्ते में एक फोन आ रहा था, भाई जी आप तो आबू में रहते हैं, वहाँ भी तो बहुत ठंड है, हमारे यहाँ ठंड है, हम तो उठ नहीं पाते, बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है सवेरे। मैंने कहा तो सो जाया करो, कहा नहीं पर बाबा को तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बाबा आपको गर्म करेगा फिर अच्छी तरह। जिसको उठना उसके लिए ठंडी गर्मी बरसात कोई महत्व नहीं रखती। एक सुंदर बात और कही, कल छोटी बातें थी पर एक एक लाइन राज भरी थी। एक तो रात को, वो तो आज सवेरे था शायद, कल ही था, ये साकार मुरली बहुत अच्छी चली है बाबा की। रात को आधा घंटा योग करके सोएं तो सवेरे का योग बहुत अच्छा हो जाए। जो अभ्यास रात को करके सोएंगे वही उठते ही हो जाएगा। और रात को क्या करो, बाबा को सारा चार्ट सुना दो। बाबा ने कहा थक जाते हैं कभी कभी तो क्या हो जाता है, उस थकान का प्रभाव अपनी ओर खींच लेता है, सोचते बाबा अब गुड नाइट, सो रहे हैं, कल सुना देंगे तुम्हें, सो जाने दो आज। एक और बहुत सुंदर बात आप में से कैच की हो, नोट तो की होगी, प्रिंट भी हुई होगी, बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है वैसा पुरुषार्थ करो, जैसा बाप मुझसे चाहता है वैसा पुरुषार्थ करो। तो अब तपस्या अच्छी करनी है, करनी है, माताएं करेंगी या घर चली जाएंगी जनवरी में, फिर तो बच्चों की तपस्या होनी है, क्या इरादा है। एक ने अभी ये प्रश्न पूछा, मैंने ज्ञान सरोवर से चला तो फोन ऑन कर लिया कि चलो किसी का आ जाए बेचारे का। पहला फोन, मेरा तो पढ़ाई का लास्ट ईयर है और हम आप ये तपस्या वर्ष मना रहे हो, मैं क्या करूं, बीटेक का लास्ट ईयर है, मुझे तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाई में। मैंने कहा अब तुम्हारा ये पढ़ाई की तपस्या का साल है, तुम अपने ढंग की तपस्या करो, हम अपने ढंग की करेंगे तपस्या। सबसे सुंदर तपस्या, अब मैं शुरुआत करता हूँ थोड़े में, बुद्धि को क्लीन और स्थिर करने की तपस्या, बुद्धि को स्वच्छ और स्थिर करने की तपस्या। जिनका योग नहीं लगता वो समझ ले उन्होंने बुद्धि में ज्यादा माल भर लिया है। कौन सा माल? व्यर्थ, उसे हटाना पड़ेगा। जिनको खुशी नहीं रहती, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, जो परेशान रहते हैं, जिनके जीवन में सुख शांति नहीं है, उसका पहला कारण बुद्धि में गंदगी बहुत भर ली है, उसका पता होना चाहिए। एक है पाप कर्म, वो तो कई मनुष्य जानते भी हैं, कई लोग पाप करते भी नहीं जानते कि वो पाप कर रहे हैं। लेकिन दूसरा है बुद्धि में किचरा भर लेना, दूसरे के लिए बुरी भावनाएं भर लेना, उसको स्वच्छ करना भी एक तपस्या है। स्वच्छता का अभियान चलाया ना प्रधानमंत्री ने, हम अभियान चला दें मन बुद्धि को स्वच्छ करने का, अपने दिल को स्वच्छ करने का अभियान। ठीक है, एक तपस्या। दूसरी तपस्या आत्मभिमानी होने की, तीसरी तपस्या स्वमान की, चौथी तपस्या आत्मिक दृष्टि की, पांचवी तपस्या योग। बाबा से भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास करने की तपस्या, और छठी तपस्या बोलो, अब आपको बोलना है प्योरिटी की तपस्या, पवित्रता बहुत बड़ी तपस्या है, उसमें सब विकारों को छोड़ना आ गया, केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं, सारे विकार छोड़ देना। मोह भी अगर बहुत है वो भी विकार है, जो आत्मा को सुखी नहीं रहने देता। मान लो किसी माता में ब्रह्मचर्य बहुत मजबूत है लेकिन मोह बहुत है, तो क्या होगा? पवित्रता का बल अनुभव नहीं होगा। पवित्रता की खुशी तो होगी लेकिन उसका बल मिले आत्मा को, ये फीका पड़ जाएगा, क्योंकि मोह में संकल्प बहुत जाएंगे। बच्चा जरा सा बीमार हुआ और मन बीमार हो गया माँ का, सारा दिन सोच रही है अब क्या करूं। तो बहुत अच्छा, ये सब तपस्या सबको करनी है, इसका प्लान बना। हाँ, त्याग, त्याग तो चाहिए तपस्या से पहले। कर्मेंद्रियों को रसों से मुक्त करना, ये प्रायोरिटी में आ जाएगा, पर ये भी एक अच्छी तपस्या है। कर्मेंद्रियों के रस भी आत्मा को बहुत निर्बल बना रहे हैं, कमजोर करते हैं। मान लो छोटी सी बात देखो, किसी को खाने पीने का रस बहुत हो तो क्या होगा? अनुभव होगा, एकाग्रता नष्ट होगी। एक ही रस मिलेगा, या कर्मेंद्रियों का रस या बाबा का रस। आंखों से बहुत कुछ देखने का रस बढ़ गया तो बाबा का रस खत्म, बुद्धि योग डाउन। इसलिए इन रसों पर भी ध्यान देना है। और बहुत खतरनाक है, मैं दूसरे रस को खतरनाक कहूंगा, कानों का रस है या नहीं? निंदा होने लगे बड़ा आनंद आने लगता है, वाह, और चले कॉन्फ्रेंस आधा घंटा, निंदा रस मिल रहा है। माताओं की कॉन्फ्रेंस जब होती है ना, घरों के आंगन में चार पांच कुर्सियां पड़ जाती हैं, माताएं आ बैठती हैं, उस रस से क्या नुकसान है? एकाग्रता नष्ट हो जाती है, और बुद्धि जिसमें भगवान को बैठना चाहिए उसमें व्यर्थ बातें बैठ जाती हैं। वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने ऐसे किया, ये सब सत्य नहीं होता। सुनी हुई बातें सारी सत्य नहीं होती, ये फाइनली समय लेना चाहिए सबको। ठीक है या नहीं? सुनी हुई बातें आधी झूठी होती है, मनुष्य बना के सुनाता है, फिर वो औरों को सुनाएगा और जोड़ेगा, और फाइनल में जाके जो असली बात है वो लोप, केवल कहानियां रह जाएंगी। इसलिए सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तपस्याएं हमें करनी है, लक्ष्य और लक्षण पे ध्यान दें। स्वमान की सीट, वो संपूर्णता की सीट पर हमें बैठना है। करेंगे गहरी चर्चा, कौन सी है वो सीट, क्या है उसका स्वरूप, कैसे हम समझेंगे कि हम संपूर्णता की सीट पर बैठे हैं। बोलो, सबसे गुह्य टॉपिक है। कल तो बाबा बहुत गहरी गहरी बातें एक एक लाइन में कह रहे थे। जब हम पूरे योग युक्त हो जाएं, योग लगने लगे हो तो पहला कदम है। जब हम योग युक्त हो जाएं, आगे चलो, जब हम जोर से बोलो, स्मृति स्वरूप हो जाएं, बहुत अच्छी बात। जब हम भाई इच्छा मात्र अविद्या हो जाएं, बोलो 10-20 पॉइंट, ये योग युक्त में आ गए। बोलो, जब हम स्वमान की सीट पर स्थित हो जाएं, भाई कर्म योग योग में आ जाएगा, योग युक्त जीवन। और बोलो हेम सिंह, जब हम पूरे नष्ट मोह हो जाएं, जब हम पूरे अनासक्त हो जाएं, जब हम उपराम हो जाएं। बाबा संपूर्णता का ये उदाहरण देते थे, हलवा जब बन के तैयार होता है तो क्या निशाने, किनारे छोड़ेगा, कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, घी पर आ जाएगा, घूमने लगेगा आराम से। हम भी किनारे छोड़ दें, डिटैच और उपराम हो गए हों पूरी तरह, ये संपूर्णता की सीट है। देख लेना है कितनी दूर है। और बोलो, साक्षीपन की सीट संपूर्णता की सीट है। खड़े होके जरा, एकाग्रता इन सब में जुड़ गई, बुद्धि स्थिर हो जाए और जोड़े इसमें, जब हमारे अंदर संपूर्ण समर्पण भाव आ जाए वो संपूर्णता है। अब व्यर्थ बोल रही हैं तो इस तरह, जब व्यर्थ से हम पूरे तरह मुक्त हो जाएं। और बोलो, इच्छा मात्र मावक है, बोलो भाई, जब निरंतर आत्मिक दृष्टि हो जाए, आत्मा के सिवाय और कुछ न देखें, जब हमारी प्योरिटी परफेक्ट हो जाए। हाँ, ये सब योग युक्त में आ गए, ये सब उसके लक्षण होंगे। ये हाँ, वैराग वृत्ति उसका आधार हो जाएगा करने का, त्याग और वैराग। तो ये हमारी संपूर्णता की सीट है। चित्र बनाए एक अपना, एक ऊंचा सा सिंहासन है, उस पे हम विराजमान हैं और हमेशा योग युक्त हैं। चित्र बनाओ अपना, बाबा की किरणों की बरसात मुझ पर हो रही है, मैं संपूर्ण फरिश्ता हो गया हूँ, मैं संसार से ऊपर हूँ, कोई संसार की चीज मुझे बांध नहीं रही है, मैं स्वमान की सीट पर अर्थात श्रेष्ठ स्मृतियों का स्वरूप हूँ। चित्र बनाया करें रोज, और ये बहुत अच्छी बात है, बाबा ने भी कहा कि रोज सवेरे अपने इस लक्ष्य को जरा याद करें। ये बहुत अच्छा होता है अगर उठते और सोते समय हम अपने महान लक्ष्य को सामने ले आएं, तो सवेरे उठना बहुत इजी होगा, सवेरे आनंद लेना बहुत इजी होगा। रात को ही संकल्प करके सोएं, संसार को हमारी सकास की बहुत जरूरत है। जल्दी उठूं और मनुष्य आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करूं तो सुस्ती आएगी। जिस माँ के बच्चे दुख से रो रहे हों वो सवेरे सोएगी, सोएगी माताएं। हम सब भी पूर्वज हैं, ये सब हमारी रचना भी है, हमें उनकी पालना करनी है। वो दुखियों रस्यांत हो, हमें सकाश देनी है, तो उठते चुस्त हो जाएंगे। उठते ही फिर याद कर लो, संसार को हमारी सकास की बहुत जरूरत है। चेतनता आ जाएगी एकदम से, बहुत अच्छा होने लगेगा। तो संपूर्णता की सीट छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा छोटी बातें आती हैं और तीव्र पुरुषार्थ को समाप्त कर देती हैं, कदम रोक देती हैं। कौन सी बातें? ये अलग एक सुंदर टॉपिक है, पहला अलबेलापन। चार दिन सवेरे उठेंगे फिर डीले हो जाएंगे, काम बहुत था, मेहमान आ गए थे, तबीयत थोड़ी ढीली थी, एक बार उठना छोड़ा, अगले दिन फिर सोचेंगे ठंड बहुत है आज, तो आज सो जाएं कल उठेंगे, कल फिर आ गई, फिर वही संकल्प आएगा ठंड बहुत है। ध्यान देंगे सवेरे उठने में, जिस संकल्प को आने की आदत पड़ जाए वो बार बार आपके पास आएगा। अगर आपको संकल्प होने लगा अभी तो चार बजने में 5 मिनट है ना, 5 मिनट और सो लूं, 5 मिनट कोई सोता है? फिर भी मनु सोचता है 5 मिनट में पता नहीं कितना सुख मिल जाएगा नींद का, 5 मिनट और सो लूं। रोज वही संकल्प उठेगा और सीधे 5 बजेंगे, होगा या नहीं? सबको अनुभव होगा, मुझे भी है कभी कभी का। फिर मैं छोड़ा, ये तो माम आया होगी, मैं सोचा कोई 5 मिनट सोता है क्या? जब हम यहाँ संगठन में थे तब ये हो जाता था। तो कौन सी बातें ढीला करती हैं? कोई छोटा मोटा पेपर आ गया, किसी बात से स्वयं को डिस्टर्ब कर लिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बात से यदि स्वयं को डिस्टर्ब कर लिया तो डिस्टर्ब होना तो 1 सेकंड में हो जाएगा, पर पुनः स्थिति बनाना लंबा काल कभी कभी गुजर सकता है। ध्यान देंगे इस बात पर, किसी भी बात से स्थिति बिगड़े नहीं, बातों की कीमत बहुत कम, हमारी स्थिति की कीमत बहुमूल्य, अथाह कीमत है हमारी स्थिति की, है या नहीं? हम शांत रहें, हम आनंदित हों, हम योगयुक्त हों, तो क्या होगा? सारी परिस्थितियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। हमने स्थिति बिगाड़ ली तो परिस्थितियां बिगड़ती जाएंगी, होगा या नहीं? स्थिति बिगड़ते ही परिस्थितियां बिगड़ने लगेंगी, पक्का सब कर लें। इसलिए कोई भी बात जल्दी से जल्दी समाप्त करें। बातें तो आती रहेंगी, सेवाओं में भी आएंगी, परिवारों में भी आएंगी, आपके पास बच्चों की ओर से भी आएंगी, माताओं को पति की ओर से भी आएंगी, कुमारों को भी आएंगी, कुमारियों को भी आएंगी, बातें सबके सामने आएंगी। लेकिन जो मनुष्य बातों को मूल्य नहीं देता, जो बातों को एक एक संकल्प से काटता चलता है, जो बातों में स्वयं को नहीं उलझाता, जो बातों के विस्तार में नहीं जाता, बातें उसकी स्थिति को नहीं बिगाड़ती। और बातों पे सोचना शुरू कर दिया, आप सेवा कर रहे हैं, छोटी सी बात हो गई, किसी ने आपकी शिकायत की, आज इन्होंने ये काम नहीं किया, और आप उससे परेशान हो गए, तो यहाँ का सुख खत्म। और आपने उत्तर दे दिया, हाँ भाई ये काम नहीं हुआ, कल से इसको ठीक करेंगे, बात भी खत्म, स्थिति भी श्रेष्ठ। इसलिए हर बात को जल्दी से जल्दी खत्म करना ये सबसे अच्छी कला है सुखी जीवन की। मैं एक बात सुनाया करता हूँ क्लास में, जो मनुष्य बातों को पकड़ कर रखते हैं वो आने वाले स्वर्णिम अवसरों को गंवा देते हैं, ये जानना चाहिए माताओं को। समझा माताओं ने? अगर आपने एक बात पकड़ ली तो सुंदर अवसर आपके सामने आ रहे हैं, वो मिस हो जाएंगे। मान लो कल ही देखो, बाबा हमारे सामने आया और बाबा ने बहुत सुख दिया, मिल गया था ना 2 घंटे की बाबा के साथ बैठने में हम सबको बहुत सुख मिलता है ना। मैं तो सोचा करता हूँ बाबा मुरली न चलाए, 2 घंटे बीच में आके बैठ जाए हमारे साथ, दृष्टि देता रहे कितना मजा आएगा, 2 घंटे आनंदित हो जाएंगे ना सब। बीच बीच में बोल दे, तुम बहुत प्यारे हो मेरे मीठे बच्चे हो, कितना ढूंढा तुमने मुझे, मैंने तुम्हें, मिल गए, बस देखो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं सोच रहा था जब बाबा ने कहा बाप जैसा चाहते हैं वैसा करो, तो मैं सोचा एक लौकिक में भी बाप क्या चाहता है। देखो मोहवश भी मेरे बच्चे मेरे पास रहे, है ना, सबसे पहली माँ बाप की कामना मेरे बच्चे मेरे पास रहे। भगवान की भी तो कामना होगी, मेरे बच्चे बोलो तो रहेंगे उसके साथ उसके पास, जो उससे योग युक्त रहते हैं वो यहाँ नहीं रहते, उसके पास रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपने योग के चार्ट को बहुत अच्छा बढ़ाना। तो विचार करें कौन सी बात मेरी स्थिति को नीचे लाती है, उन बातों का कुछ ज्यादा महत्व नहीं होता है। शांति से बैठ के विचार करना, ये जो बात सामने आई इसकी कितनी कीमत है जिसके कारण मैं अपनी स्थिति बिगाड़ लूं? क्या इस बात से मेरा कुछ बिगड़ जाएगा जो मैं अपनी स्थिति बिगाड़ लूं? ये बात मूल्यहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा अपने को ट्रेंड करेंगे। बातों के बारे में बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बातें आती हैं चली जाती हैं, जो बातें जाने वाली हैं उससे तुम अपनी अविनाशी खुशी को नष्ट क्यों करते हो। हाँ, बात बड़ी या बाप बड़ा, बातें बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं, हमारा साथी बड़ा है। एक बहुत अच्छा स्लोगन जैसा व्हाट्सएप पे आता रहता है, समस्याओं से कह दो शक्तिशाली तुम नहीं हो, शक्तिशाली तो मेरा बाबा है। हाँ, कुछ ऐसा ही आता है ना, मेरा खुदा बड़ा है। तो ये संकल्प है ना, केवल ये संकल्प अपने अंदर रखें तो छोटी बातें स्थिति को बिगाड़ेंगी नहीं। लक्ष्य और लक्षण पर भी ध्यान दें, हमने जीवन का कोई महान लक्ष्य बनाया है, संपूर्ण बनना, लक्ष्मीनारायण बनना, वो तो मुरलियों तक है बस। हमारे पास क्या है जिसके साथ हमारे जीवन में उसके लक्षण भी आ रहे हों? अगर लक्ष्य है और लक्षण कुछ नहीं आ रहे हैं तो माना लक्ष्य है ही नहीं। किसी ने लक्ष्य बनाया हो, मधुबन जाना है 18 जनवरी को बाबा से मिलने, लेकिन 15 जनवरी आ गई और उसके जाने के लक्षण कुछ न दिख रहे हों, तो लोग पूछेंगे ना, जाना है ऐसे ही बात कर रहे थे कि न तैयारी है, न रिजर्वेशन कराई, न अटैची तैयार की है, न किसी को कहा है। हर लक्ष्य के साथ लक्षण तो पहले से ही चमकने लगते हैं या नहीं? हर जगह हर फील्ड में आप देख लो, जो भी छोटा लक्ष्य रोज का भी हम बनाते हैं उसके साथ साथ लक्षण आने लगते हैं। हम अपने जीवन का सुंदर लक्ष्य बना लें, क्या देखो अगर हम लक्ष्य बनाएं कि मुझे 5 साल में फरिश्ता बनना है, ये तो नहीं कह सकते कल से मैं फरिश्ता हूँ, ये तो केवल कहने की बातें हो जाएंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करें। हम लक्ष्य बनाएं कि 5 साल में मुझे फरिश्ता बनना है, फरिश्ते का स्वरूप हम सामने लाएं और कोई 5 पॉइंट तो रखें जिन्हें धारण करके हम फरिश्ते बनेंगे, हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, हम बहुत हल्के होंगे, भारी नहीं रहेंगे, हम योग का चार्ट अपना बढ़ाते चलेंगे, हमारे कर्म महान होते चलेंगे, हम शक्तिशाली बनते चलेंगे, ये लक्षण होंगे पुरुषार्थ और उसका स्वरूप, तो हम फरिश्तेपन के बाकी सब लक्षणों को धारण कर लेंगे। किसी ने लक्ष्य रख लिया हो मुझे रोज अमृत वेले उठना है, लेकिन वो सोते हो 12 बजे, तो लक्ष्य पूरा होगा? जो लक्ष्य रखते हैं कि मुझे 3 बजे उठना है, तो वो सोने का क्या लक्ष्य बनाते हैं? 9:30 तक सो जाना है, चुस्त हो जाते हैं। तो लक्ष्य के साथ इस तरह लक्षणों की शुरुआत होने लगती है। हम अपने जीवन को सुंदर लक्ष्यों में बांधें। कैसे लक्ष्य? शुरू ऐसे करेंगे, मधुबन में आप सब रहते हैं सेवादारी भी, कि मुझे अपना रोज देखो ऐसे ऐसे 5 बार बाबा के कमरे में बैठना है, लेकिन घंटों नहीं, नहीं तो कोई और नहीं बैठ पाएगा, थोड़ा थोड़ा समय। मुझे जब दीदी मनमोहिनी थी ना हमारे यहाँ मधुबन में, 2 दिन मंडे और गुरुवार, सोमवार और गुरुवार मौन चलता था, एक वैराग का माहौल रहता था। अब सब छूट गया है समय के अंतराल से, समय के प्रभाव में। हम लक्ष्य बना ले हमें 2 दिन शांत रहना, ऐसा मौन भी न रख के दूसरे परेशान हो जाए, लेकिन हमें 2 दिन शांत रहना है। हमारे शांतिवन में यही हुआ, बहुत लोगों ने मौन रखा तो कुछ बड़े लोग परेशान हो गए, काहे मौन मौन छोड़ो भाई, तब से छूट गया बेचारों का सबका ही। तो ऐसी कोई हम चीज ना करें जिससे सेवाओं में बाधा पड़ने लगे, कि हाँ हाँ कोई हमें बुला रहा और हम कहें चुप, बुलाना नहीं, मौन है आज हमारा, ऐसा नहीं। तो लक्ष्य बनाए हमें अपने योग को 4 घंटे तक करना है। हम लक्ष्य बनाएं कि जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा हम ये अभ्यास करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके हैं, सभी खड़े तो हो जाते हैं, बैठ जाते हैं 1 मिनट 3 मिनट, लेकिन अभ्यास क्या करते हैं? कोई तो दूसरों को ही देखते रहते हैं, ये भी कर रहा है या नहीं, या मैं अकेली कर रही हूँ, उनका तो 1 मिनट ऐसे ही बीत जाता है, होता है नहीं? होता है ये भी। फिर उसे कहेंगे तुम योग नहीं करता, अगर वो पूछ ले तुमने किया था, तुम मुझे देख रहे थे। देखो कितनी बार हमें 12-16 बार मौका मिलता है रोज, अगर हम लक्ष्य बना लें आज, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए, एक एक दिन की प्लानिंग चाहिए। आज हम हर ट्रैफिक कंट्रोल के गीत पर अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर हम ग्लोब को सकास देंगे। हाँ, भिन्न भिन्न अभ्यास, आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर आपकी बात ले लें, हम अपने पूज्य स्वरूप में रहेंगे। आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर हम अपने भविष्य को देखेंगे, देव स्वरूप में रहेंगे। लक्ष्य बनाओ, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आज हम सभी दुखी आत्माओं को सकास देंगे। आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर हम अभ्यास करेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं। ये भिन्न भिन्न अभ्यास हम प्रारंभ करें, इसके लिए चाहिए स्वयं की स्वयं प्लानिंग करना। बाबा कभी ये बात बहुत अच्छी तरह कह चुके हैं कि हमें यज्ञ से प्लानिंग आए या मैं आपको प्लानिंग दू क्लास में, उससे ज्यादा काम नहीं होगा। आप अपनी प्लानिंग जब तक खुद नहीं करेंगे, बाबा ने कहा ना प्रोमिस कर लो, जब तक अपने से वायदा नहीं करेंगे और अपनी प्लानिंग पे दृढ़ नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं, क्योंकि ढीली करने वाली बहुत बातें मनुष्य के सामने आती हैं। और नहीं तो एक बड़ी रॉयल बात आती है, योग कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद अब योग करने को मन ही नहीं कर रहा है, बोर हो गए। ये ब्रेन की स्थितियां हैं, इसको कोई समझ नहीं सकता क्या होता है, क्योंकि ब्रेन में निगेटिविटी बहुत भरी हुई है और हम कर रहे हैं योग तो 8-10 दिन के बाद वो निगेटिविटी कभी कभी बाहर आ जाती है, मनुष्य को डिस्टर्ब कर देती है। ये सब बातें, ये सब बाधाएं पुरुषार्थ के मार्ग में आती हैं, लेकिन जहां लगन श्रेष्ठ है वहां विघ्न नहीं, ठहरेंगे नहीं। इसलिए अपनी प्लानिंग करें, 4 घंटे योग रोज करना है। बाबा कमरे में जब तक यहाँ है 10-10 मिनट ज्यादा नहीं, 4 बार अवश्य बैठना है। और इम्पोर्टेंट चीज, किसी एक संस्कार का परिवर्तन, सारा परिवर्तन हम कहें तो लोगों को 20-20, 30-30 साल हो गए, वो संस्कार छूटा नहीं, अब उस पर जरा कड़ी नजर कर दें। परेशान होने का, मोह ममता रखने का, जिद सिद्ध करने का, दुखी रहने का, कौन सा संस्कार है मेरे अंदर? ज्यादा बोलने का, क्रोध करने का, अशांत होने का, पर चिंतन का, कौन सा संस्कार है मेरे पास? उस एक संस्कार में चेंज लाएंगे। ये सबको स्वयं करने हैं, कहने से कुछ नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कितनी बार हम सब बाबा की मुरली रोज सुन चुके हैं। आज की मुरली कैसी थी? आज की मुरली में सबसे आनंदकारी पॉइंट, रोज याद किया करना, तुम मेरी बहुत कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। मजेदार बात मैं कह रहा हूँ, श्रीमत की बात नहीं, ऐसी बात जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें जगाती है। तुम माया की बहुत सुनते हो, मेरी कम सुनते हो। सवेरे ठंड होती है तो माया कहती है सो जाओ, हम सुनते हैं। बाबा कहता है जगो, हम तक आवाज नहीं आती। होता है या नहीं? मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी, कई बार सुन चुके हैं, आज फिर से खूब याद आई। तुम मेरी, देखो भगवान कहता कितने प्यार से, बुलाया मुझे था, देना मुझे है सब कुछ, मेरी कम सुनते हो। जैसे कोई माँ बाप बच्चों कौन कहे ना, तुम मेरी सुनते नहीं हो आजकल, पहले बहुत सुनते थे। बाबा भी हमें बहुत प्यार से कहता है तुम माया की बहुत सुनते हो, मेरी नहीं सुनते। याद किया करें तो रस आएगा कि नहीं हमें तो बाबा की सुननी। हम क्या उत्तर देंगे? नहीं बाबा, बोलो हम आपकी सारी सुनते हैं, माया की नहीं सुनेंगे। ठीक रहेगा ना? तभी तो मजा आएगा, बाबा भी खुश होगा कि मेरे बच्चों में कुछ दम है, नहीं तो कहेगा ही अब तक माया के ही बने हुए, दम नहीं आया है अब तक। तो हम सभी बहुत अच्छी तरह लास्ट चिंतन कर ले 3 मिनट में, बाबा हमें कैसा देखना चाहता है, जैसा बाबा हमें पुरुषार्थ कराना चाहता है, क्या हम भी वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहते हैं? अगर दोनों की चाहना समान हो जाए तो हमारा बेड़ा पार। क्या चाहता है बाबा हमें, क्या देखना चाहता है, क्या हमसे कराना चाहता है? बोलो बोलो, बात ये भी सुंदर है, मेरे समान बन जाए। जो कहा वो करके दिखाना, ये मुरली में था। मेरे बच्चे सदा खुश रहें, मेरे बच्चों के चेहरे संसार के लोगों के चेहरों से अलग दिखाई दें। 100 लोगों के बीच 2 खड़े हों, लोग पहचान लें कि ये कुछ अलग हैं, ये कुछ अलग हैं। बोलो और बहुत अच्छा। हाँ, बाबा भैया जैसे ब्रह्मा बाबा ने निरंतर योग युक्त होने का अभ्यास किया, वैसे ही बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे भी निरंतर तो न कहें हम, अच्छे से अच्छा योग तो कर लें, ऐसा योग तो कर लें जिससे आत्मा की भूख मिट जाए, क्योंकि योग में परमात्म सुख मिलता है, योग में हम उनके साथ रहते हैं तो जन्म जन्म की भूख मिटती है। हर आत्मा उतना योग अवश्य कर ले जो ये भूख तृप्त हो जाए। और सोचो कैसा पुरुषार्थ चाहते हैं बाबा, मुख से क्या हो आज की मुरली, मुख से ज्ञान रतन ही निकले। और 2-4 दिन पहले था, अब के ज्ञान रतन सतयुग में हीरे जवाहरात बन जाते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं, रहस्य बाबा सुनाते हैं ये सब। तो बाबा कैसा देखना चाहते हैं हमें, संपूर्ण पवित्र, मुख से रतन, और क्या नहीं देखना चाहते, आज की मुरली, आज की मुरली। किसी को दुख देने वालों को पर चिंतन, झरमुई झंगमुई तेरे मेरे में रहने वालों को बाबा प्यार नहीं करता, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, जो वैसे कदम उठाते हैं जैसे उसने सिखाए हैं, उन पर बाबा का बहुत प्यार रहता है, भगवान राजी रहता है ऐसी आत्माओं पर, जो बहुत मीठे हैं और साथ में सुखदाई हैं। हाँ, कर्मों को भी बाप समान, कैसे हैं बाप समान कर्म, डिटैच, दूसरों को सुख देने वाले कर्म, दिव्य कर्म, चिंतन करना दिव्य कर्म किसे कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म तो हम जानते हैं पुण्य कर्म, लेकिन दिव्य कर्म किसे कहते हैं। बाबा हम सबको दिव्य कर्म करता हुआ देखना चाहता है। और आज की मुरली में क्या कहा, तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं सब कुछ तुम्हें बलिहार करूं। बाबा हम सबको देने आए, याद है ना, गरीब बच्चे बलिहार होते हैं, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण होता है। तो बाबा हमें जैसा योग युक्त देखना चाहता है, बाबा की जैसी श्रेष्ठ इच्छा है कि मेरे बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें, सोचना वैसा ही करेंगे। अब हम योग करेंगे, सामने ब्रह्मा बाबा को एक क्षण देख लो, निरंतर शिव बाबा से योग युक्त, वैसे ही हम भी अब 3-4 मिनट परम धाम में बाबा से योग युक्त।
प्रभु का ध्यान।